ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 9,63,00,000 मतदाताओं के लिए 1,00,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि झारखंड में 26,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर 2,60,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आयोग ने बताया कि कई राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। झारखंड में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश पार्टी प्रभारी बाबूलाल मरांडी भी हिस्सा लेंगे। झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि बैठक में एनडीए के सीट बंटवारे के फार्मूले पर भी चर्चा होगी। उमर अब्दुल्ला कल सुबह 11:30 बजे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में आयोजित किया जाएगा। श्री अब्दुल्ला और उनके मंत्रिपरिषद को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उपराज्यपाल ने कल उमर अब्दुल्ला को आधिकारिक निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए सुरक्षा, सम्मान और समानता को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। श्री प्रधान ने कहा कि ये केंद्र अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और जन कल्याण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये केंद्र नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज अल्जीरिया के अल्जीरियस में सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोले विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये उपाधि मेरे देश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से समृद्धि और शांति के लिए खड़ा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए आज दोपहर बाद पाकिस्तान के इलाहाबाद पहुंचे। इस वार्षिक बैठक में व्यापार और आर्थिक मुद्दे मुख्य एजेंडा हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत को खारिज कर दिया था। सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इसी स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन छठे स्थान पर रहीं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज पीवी सिंधु का सामना चीनी ताइपे की पाई यू पो से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।